السلام علیکم، یہ پارٹ 21 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 21. یہاں تو ریتیلا میدان ہی نظر آ رہا ہے. اتنے بڑے میدان میں ہم نیچے موجود ہیڈ کوارٹر کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہمیں ہیڈ کوارٹر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیڈ کوارٹر اب ہمیں خود بتائے گا کہ وہ کہاں ہے، عمران نے کہا. ہیڈ کوارٹر خود بتائے گا؟ کیا مطلب؟ ہیڈ کوارٹر بھلا ہمیں اپنے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم نے شاید کار فلے کی باتیں دھیان سے نہیں سنی تھی. اس کی باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ریڈ کمانڈوز کو چیف کی اجازت کے بغیر اپنی ثواب دیدہ پر بھیجا تھا، اور میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ اس نے ہمارے بارے میں اپنے چیف کو ابھی تک لا علم رکھا ہوا ہے. وہ فاکشیا میں جان بوجھ کر اپنا نشان چھوڑ آیا تھا تاکہ ہم اس کے پیچھے آ سکیں اور وہ ہمیں ہلاک کر سکے. اس لیے اس نے چار لاشوں پر اپنا میک اپ کیا تھا، ورنہ جس طرح اس نے کامیابی حاصل کی تھی وہ تنویر کو بھی ہلاک کر کے نکل سکتا تھا. اس نے سوچا ہوگا کہ ہم ان لاشوں کے چہرے صاف کر کے پہچان جائیں گے کہ ان افراد کا تعلق کس گروپ سے ہے، اور جب ہم اس گروپ کے سربراہ کا منہ کھلوائیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں اور اس کے کامیاب مشن کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، اور ہمیں لامحالہ اس کے پیچھے آنا ہی پڑے گا. وہ جس خاموشی سے پاکشیا میں کام کرتا رہا تھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بلیک ہارٹ ایجنسی کے چیف نے اسے تمام پاکشیائی فورس اور خاص طور پر ہم سے بچ کر رہنے کی ہدایت دی ہوگی، جبکہ تنویر کو دیکھ کر اس کے شیطانی دماغ میں کیڑا گھس گیا ہوگا. اس نے سوچا ہوگا کہ وہ تنویر اور پاکشیا سیکرٹ سروس والوں پر یہ بات ثابت کر دے کہ اگر اسرائیل میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو اسرائیلی ایجنٹ بھی اپنے کسی بھی مشن کو ان کے ملک میں آسانی سے پورا کر سکتے ہیں. یہ بات اس نے یقینی اپنے چیف سے مخفی رکھی ہوگی، اور اب چونکہ ہیڈ کوارٹر میں چیف موجود نہیں ہے اس لیے وہ سارے کام بالا ہی بالا کرتا جا رہا ہے تاکہ چیف کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہم سب کو کا خاتمہ کر دے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا. او ہاں، ٹرانسمیٹر پر کافلے نے کہا تھا کہ چیف کے آنے سے پہلے وہ مزید ریڈ کمانڈوز بھیج کر ڈیزرٹ سے تمام ریڈ کمانڈوز کی لاشیں اور ہیلی کاپٹروں کے ٹکڑے ہٹا دینا چاہتا ہے، کیپٹن شکین نے کہا. اس نے کہا تھا کہ شام تک چیف کی واپسی ہوگی، اور شام ہونے ہی والی ہے. اب ان کا چیف یہاں آنے ہی والا ہوگا، وہ یقیناً کسی ہیلی کاپٹر میں ہی آئے گا، اور چیف کا ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر کے باہر تو رکے گا نہیں، اسے ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر میں لے جایا جائے گا، اور ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر میں اتارنے کے لیے انہیں ہیڈ کوارٹر کا کوئی نہ کوئی راستہ کھولنا ہی پڑے گا. جیسے ہی راستہ کھلے گا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، عمران نے کہا. او تو تم اس نظریے سے کہہ رہے تھے کہ ہیڈ کوارٹر ہمیں خود بتائے گا کہ وہ کہاں ہے، جولیا نے کہا. توبہ، کاک فلے تو نام کا ہی ڈیول مائنڈ ہے، اس سے بڑا شیطانی دماغ تو اس کا ہے جو اندازوں اور خیالوں ہی خیالوں میں ہر بات جان لیتا ہے. اس لیے ڈیول مائنڈ ایجنٹ کاک فلے کو نہیں بلکہ عمران کو ہی کہنا چاہیے، تنویر نے منہ بنا کر کہا، اور وہ سب ہنس پڑے. میں تو محض ڈیول مائنڈ ہوں، لیکن تم مجسم ڈیول ہو، اسی لیے تو اب تک اپنی پیاری بہن کو اپنے سر پر بٹھائے رکھا ہے. اگر تمہارا دماغ صاف ہوتا تو تم اس کی شادی مجھ سے، مم مم میرا مطلب ہے وہ، عمران نے کہا، اور وہ سب ہنس پڑے، جبکہ تنویر سے تیز نظر سے گھورنے لگا. اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہوتی اچانک تیز گڑگڑاہٹ ہوئی، اور انہوں نے پہاڑی کو بری طرح سے لرستے ہوئے محسوس کیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے اچانک پہاڑی درمیان سے پھٹ کر दो हिस्सों में दाएं और बाएं खिसकती चली गई और वो चूंकि पहाड़ी के दरमियान में थे इसलिए जैसे ही पहाड़ी दो हिस्सों में तकसीम हुई वो सब नीचे खुले हुए खला में गिरते चले गए। नीचे गिरते हुए वो किसी भी तरह अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को ना रोक सके थे। जैसे ही वो पहाड़ी के दरमियान में बने हुए खला में गिरकर गायब हुए इसी लम्हे एक बार फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पहाड़ी के दोनों अलग हिस्से हरकत में आकर दोबारा एक साथ जुड़ गए। अब वो पहाड़ी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कभी पहाड़ी में कोई दरार तक ना आई हो लेकिन यही पहाड़ी ऊपर मौजूद नौ जिंदा इंसानों को एक लम्हे में निकल गई थी और जाहिर है इमरान और इसके साथी जिस बुलंदी से गिरे थे नीचे जाकर इनका जो हशर हुआ होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कार खुले चीफ के ऑफिस में दाखिल हुआ तो मेज के पीछे बैठा हुआ मार्शल सेटले ने इसे देखकर चौंक पड़ा जो अभी थोड़ी देर पहले हेडक्वार्टर वापस आया था और अपने ऑफिस में चला गया था। अपने ऑफिस में जाते ही इसने काफिले को कॉल करके इसे अपने पास अपने ऑफिस में बुला लिया था। आओ काक मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था आओ बैठो मार्शल सेटले ने इसे देखकर कहा और काफिले मुस्कुराता हुआ इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब जॉर्ज की हालत कैसी है चीफ काफिले ने पूछा। पहले से बहुत बेहतर है मार्शल सेटले ने जवाब दिया। क्या आपको इसकी तमाम फिजिकल रिपोर्ट्स मिल गई है काफिले ने पूछा। हाँ इसीलिए तो मैं मुतमईन होकर यहाँ वापस आया हूँ मार्शल सेटले ने इस बात में सर हिलाकर कहा। थैंक गॉड मैं जॉर्ज के लिए बेहद परेशान था शुक्र है कि इसकी जान बच गई है। आजकल के नौजवान इसी तरह नशे की हालत में कार ड्राइविंग करके ना हक अपनी जाने गंवा देते हैं। जॉर्ज एक समझदार लड़का है इसे नशे की हालत में कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नशे में ना होता तो इसे लाजमन पता लग जाता कि इसकी कार के ब्रेक्स फेल हैं। कार फिल्ले ने कहा। अब मैं क्या कहूँ वो मेरा इकलौता बेटा है और इकलौता होने की वजह से मैं इसे डांट टपट भी नहीं करता था। अगर मैंने शुरू से ही इस पर कंट्रोल किया होता तो इस हादसे से बच सकता था। मैं इसे शराब के नजदीक भी ना फटकने देता और जब तक वो अपनी तादी मुकम्मल ना कर लेता मैं इसे ड्राइविंग ही ना सीखने देता और ये सब तब ही मुमकिन था कि वो इस और इसकी माँ मेरे यहाँ मेरे साथ इसराइल में ही रह रहे होते लेकिन इसकी माँ इसे लेकर ग्रेट लैंड शिफ्ट हो गई थी और इसी के बेजा लाड प्यार ने इसे इस हद तक बिगाड़ दिया था कि वो किसी की सुनता ही नहीं था जिसका नतीजा ये निकला है कि अब वो अस्पताल में पड़ा हुआ है मार्शल सेटले ने कहा। यस चीफ बाज बच्चों को इनके बाप और बाज को इनकी माएं भी बिगाड़ती हैं। अगर माँ बाप दोनों ही अपनी औलाद पर तवज्जो दें और इनकी नाजायज बातों को ना माने तो औलाद बिगड़ने से बच सकती है काफिले ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बहरहाल छोड़ो जो होना था हो गया है मेरे लिए यही खुशी काफी है कि जॉर्ज की जान बच गई है। अब इसकी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं इसे और उसकी माँ को हर सूरत में वापस इसराइल ले आऊंगा बाकी की तालीम वो यही हासिल करेगा लेकिन मैं इस बात से परेशान जरूर हूँ कि वो कौन हो सकता है जिसने जॉर्ज की कार के ब्रेक फेल किए थे। ऐसा करके वो क्या चाहता था क्या इसका मकसद जॉर्ज को हलाक करने का था मार्शल सेटले ने कहा। यस चीफ ये वाकई परेशानी वाली बात है वहाँ जॉर्ज की किससे दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से वो इसकी जान का दुश्मन बन गया था किसने जॉर्ज की कार के ब्रेक फेल कर दिए थे काफिले ने कहा। ग्रेट लैंड की पुलिस बेहद फाल है वो जरूर इसका पता लगा देगी और मुझे जैसे ही इस शख्स के बारे में मालूम होगा मैं इसे इसके खानदान समेत जिंदा दफन कर दूंगा मार्शल सेटले ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा। यस चीफ इसका ऐसा ही अंजाम होना चाहिए काफिले ने कहा। अब तुम बताओ प्राइम मिनिस्टर से जब तुम्हारी बात हुई थी तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था मार्शल सेटले ने पूछा। कुछ खास नहीं वो फाइलों की डिकोडिंग का ही पूछ रहे थे जब मैंने इन्हें जॉर्ज के बारे में बताया तो वो भी मुतफक्किर हो गए थे काफिले ने कहा। तुमने फाइलों के हवाले से इन्हें क्या बताया था मार्शल सेटले ने पूछा। मैंने वक्ती तौर पर इन्हें टाल दिया था, कार्क फिल्ले ने कहा। और इन फाइलों की क्या पोजीशन है, दोनों प्रोफेसर ने फाइलें अब तक डीकोड की हैं या नहीं, मार्शल सेटने ने पूछा। यस चीफ, मेरी अभी थोड़ी देर पहले दोनों एक्सपर्ट से बात हुई थी, इन्होंने चारों फाइलें डीकोड कर ली हैं, अब वो इन फाइलों की रीचेकिंग कर रहे हैं ताकि इनकी डीकोडिंग में किसी गलती का एहतमाल न रहे, कार्क फिल्ले ने कहा। इसका मतलब है कि हम आज ही चारों फाइलें प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा सकते हैं, मार्शल सेटलेने ने कहा। यस चीफ, आज ही नहीं तो कल सुबह तक हम कंप्लीट डीकोड फाइलें इनके पास ले जा सकते हैं। इसके बाद वो आसानी से पाकिस्तान शिया की आला कयादत से बात कर सकते हैं, कार्क फिल्ले ने जवाब दिया। ठीक है, तुम खुद जाओ और जाकर इन फाइलों की रीचेकिंग करो, मैं चाहता हूँ कि चारों फाइलें हर तरह से मुकम्मल हों, इनमें किसी गलती का मामूली सा भी इम्कान ना रहे, मार्शल सेटलेने ने कहा। यस चीफ, मैं अभी जाकर खुद भी फाइलों की रीचेकिंग कर लेता हूँ, कार्क फिल्ले ने इस बात में सर हिलाकर कहा। और हाँ, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में तिल अबीब जा रहा हूँ, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा, मेरी वापसी तक तमाम फाइल वर्क मुकम्मल हो जाना चाहिए, फिर मैं फाइलें प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाऊंगा। प्लानिंग के तहत हम इन फाइलों पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की आला कायदा से बात करेंगे और इन पर इस हद तक दबाव डालेंगे कि वो फौरी तौर पर इसराइल की हकीकत तस्लीम कर लें। इनके पासपोर्ट में दूसरे ममालिक की तरह इसराइल का नाम भी शामिल होना चाहिए, वरना हम इन फाइलों की कापियां तमाम ममालिक के हवाले कर देंगे, जो इन्हें मीडिया और अखबारात के जरिए पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे और पाकिस्तान अपने बेशुमार हलीफ दोस्तों से भी हमेशा के लिए यको तन्हा रह जाएगा, मार्शल सेटलेने ने कहा। तो कार्क फिल्ले की आंखों में एक लफ्ज चमक सी आ गई, जैसे वो यही चाहता हो कि मार्शल सेटलेने कहीं चला जाए। वो खुश था कि मार्शल सेटलेने को अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ था, अगर इसे पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में पता चल जाता और उसे ये मालूम हो जाता कि पाकिस्तानी एजेंटों के हाथों इनके कितने हेलीकॉप्टर और किस कदर मुसल्ला अफराद हलाक हुए हैं, तो मार्शल सेटलेने वहाँ तूफान खड़ा कर देता, जिसे रोकना कार्क फिल्ले के लिए भी नामुमकिन हो जाता और मार्शल सेटलेने इसे अपने हाथों से वहीं शूट कर देता। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, मैं आज ही सारा काम खत्म कर लूंगा और कल सुबह फर्स्ट टाइम ही हम प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएंगे, कार्क फिल्ले ने कहा। ओके, मैं अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तुम अभी हेडक्वार्टर में ही रहो, मार्शल सेटलेने ने कहा। तो कार्क फिल्ले सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और फिर वो मार्शल सेटलेने को सैल्यूट करता हुआ इसके ऑफिस से निकलता चला गया। थोड़ी ही देर में वो अपने ऑफिस में था, इसने ऑफिस में आते ही अपने ऑफिस का कमरा लॉक किया और फिर इसने मेज के पीछे कुर्सी पर बैठते ही फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस अल्बर्ट टू स्पीकिंग, रब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से अल्बर्ट टू की मखसूस आवाज सुनाई दी। कार्क फिल्ले ने मखसूस लहजे में कहा। ओ यस बॉस, अल्बर्ट टू ने मौदवाना लहजे में कहा, इन कैदियों की क्या पोजीशन है, कार्क फिल्ले ने बंद कमरा होने के बावजूद बड़ी राजदाराना आवाज में पूछा। वो सर अभी डैम्प लैंड में मौजूद है बॉस, मैंने इनकी चेकिंग की है, वो अभी बेहोश पड़े हुए है, दूसरी तरफ से अल्बर्टो ने जवाब देते हुए कहा। इनकी जल्द होश में आने का कोई इम्कान तो नहीं है, कार्क फिल्ले ने पूछा। नो बॉस, इन्हें हैगम गैस से बेहोश किया गया है और हैगम गैस का असर कम से कम 36 घंटों तक बरकरार रहता है, 36 घंटों के बाद ही इन्हें खुद ब खुद होश आ सकता है, वरना इन्हें होश में लाने के लिए स्पेशल एंटी हैगम इंजेक्शन ही लगाने पड़ते हैं, दूसरी तरफ से अल्बर्टो ने जवाब देते हुए कहा। गुड, थोड़ी देर तक चीफ हेडक्वार्टर से तिल अबीब जा रहे हैं, जैसे ही वो हेडक्वार्टर से बाहर जाएं मुझे बता देना, फिर तुम मेरे साथ डीप लैंड में चलना, मैं इन सबको बेहोशी की हालत में अब अपने हाथों से हलाक करना चाहता हूँ, अब जब तक मैं खुद इन्हें हलाक नहीं करूँगा मुझे यकीन नहीं आएगा कि वो वाकई हलाक हो गए हैं, कासिल ले ने कहा। यस बॉस, वो सब वाकई बेहद हैरत अंगेज इंसान साबित हुए हैं। हर बार वो यकीनी मौत से बच निकलते थे। दोबारा हमने जो हेलीकॉप्टर तबाह किए थे, वो दोनों ही हेलीकॉप्टर खाली थे और वो सब पहले ही हेलीकॉप्टरों से निकल चुके हुए होते थे। मेरी स्टेफन से बात हुई है, इसने मुझे बताया है कि इसने जिस 09 ब्लैक बर्ड पर मिसाइल फायर किया था वो खाली था, जिसका मतलब था कि वो पहले की तरह फिर हेलीकॉप्टर से निकल चुके थे। वो कहाँ थे ये मालूम करने के लिए आपने मुझे टिनर से वापस बुला लिया था। इस वक्त तक मैं टिनर के फैन ठीक करने के लिए टिनर बंद कर चुका था। मैंने आपके हुक्म से सैटेलाइट चेकिंग की तो वो सब जिंदा थे और हेडक्वार्टर की तरफ बड़े चले आ रहे थे। मैं इन सबको मिसाइल मारकर हलाक कर सकता था, लेकिन चीफ के वापस आने का वक्त हो रहा था और आप हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द तबाही नहीं चाहते थे, इसलिए इन्हें आगे बढ़ने दिया गया। और फिर वो जैसे ही क्रॉस वे वाली पहाड़ी पर चढ़े, मैंने आपके हुक्म से पहाड़ी खोल दी थी और वो सब पहाड़ी में बनने वाले खला में गहराई में गिर गए थे और फिर मैंने इन्हें वहीं हैकम गैस से बेहोश कर दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर हैरत अंगेज इंसान कभी नहीं देखे थे। वो हेडक्वार्टर के सबसे गहरे हिस्से में गिरे हैं, जहां गिरकर इनके जिस्म बुरी तरह से टूट फूट जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यूं लग रहा था जैसे इनके जिस्म स्टेनलेस स्टील के बने हुए हों, जिससे इनके जिस्मों पर खराशी तक नहीं आई थी और वो गहराई में गिरने के बावजूद इत्मीनान से उठकर खड़े हो गए थे। इसलिए मुझे इन सबको बेहोश करने के लिए वहाँ हैगम गैस इस्तेमाल करनी पड़ी थी। दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू ने मुसलसल बोलते हुए कहा, हाँ वाकई वो सब बेहद खतरनाक इंसान हैं। इन इंसानों को जब तक अपने हाथों से ना मारा जाए वो मरने वाले नहीं हैं। और अब मैं ऐसा ही करूँगा, तुम बस चीफ के बाहर जाने का इंतजार करो, इसके बाद इन सब की जिंदगियों का खात्मा हो जाएगा और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, काफिले ने कहा। यस बॉस, जैसे ही चीफ बाहर जाते हैं मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, एल्बर्ट टू ने कहा और काफिले ने ओके कहकर रब्ता खत्म कर दिया। थोड़ी देर फोन की घंटी दोबारा बजी तो इसने झपट कर फोन का रिसीवर उठा लिया, जैसे वो इसी फोन की घंटी बजने का मुंतजर हो। यस एल्बर्ट टू, क्या रिपोर्ट है, काफिले ने फोन पूछा। चीफ चले गए हैं बॉस, दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू की आवाज सुनाई दी और काफिले यकलक उछल कर खड़ा हो गया। गुड शो, चलो जल्दी करो, रेड कमांडोज को अपने साथ लो और फौरन डेप लैंड पहुंच जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूं, काफिले ने कहा और इसने दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर रिसीवर क्रेडल पर पटखा और मेज के पीछे से निकल कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया, जिससे वो इमरान और इसके साथियों को हलाक करने के लिए इंतहाई बेचैन हो रहा हो और जल्दी से जल्द डीप लैंड जाकर इन्हें हलाक कर देना चाहता हो। और फिर वो दो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और निहायत तेजी से एक राहदारी में भागता चला गया। इमरान और इसके साथियों को अपने हाथों से हलाक करने के लिए इसके चेहरे पर इंतहाई जोश दिखाई दे रहा था। वो इस तेजी से भाग रहा था जैसे इसका बस ना चल रहा हो कि वो उड़ता हुआ डीप लैंड पहुंच जाए और इमरान और इसके तमाम खतरनाक साथियों को गोलियों से भूनकर राख कर दे। इमरान और इसके साथी काफी गहराई में जाकर गिरे थे। अचानक नीचे गिरते हुए इन सबके मुंह से बेख्तियार चीजें निकल गई थीं। वो जोरदार धमाकों से नीचे मौजूद ठोस जमीन पर गिरे। एक लम्हे के लिए इन्हें यही महसूस हुआ था जैसे इनकी हड्डियां टूट फूट कर रह गई हों, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब इमरान उछल कर खड़ा हुआ तो वो सब भी एक एक करके उठकर खड़े हो गए। इस बार भी हार्ड ब्लॉक्स ने इन्हें बचा लिया था और इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद ना वो जख्मी हुए थे और ना ही इनकी कोई हड्डी टूटी थी। वो एक हॉल नुमा बड़े से कमरे में थे जो चारों तरफ से बंद था और चारों तरफ दीवारें कंक्रीट की बनी हुई दिखाई दे रही थीं। ये हम कहाँ आ गए हैं, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में चारों तरफ देखते हुए कहा। कमरे की छत से तेज लाइट निकल रही थी जिससे सारा कमरा रोशन हो रहा था। वहाँ इनके अलावा और कुछ भी नहीं था। एक मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन यहाँ मुहावरा उलट ही हुआ है, खुला पहाड़ और नीचे गिरे हम, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इन सबके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहटें आ गईं। इसका मतलब है कि इन्होंने आखिरकार हमें देख ही लिया था और वो इसी इंतजार में थे कि हम कब इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और वो कब पहाड़ी खोलकर हमें यहाँ गिराते हैं, सफदर ने कहा। सैटेलाइट सिस्टम से इन्होंने हमें बहुत पहले चेक कर लिया था, लेकिन काकबिल्ले अपनी चीफ की वापसी पर मुतफक्किर था, इसलिए इसने हम पर हमला करने की कोशिश नहीं की होगी। वो यही चाहता था कि हम हेडक्वार्टर के नजदीक आ जाएं, ताकि वो हमें ऐसी ही किसी जगह गिराकर कैद कर ले, ताकि चीफ के आने पर इसे कुछ मालूम ना हो सके। चीफ के जाने के बाद वो हमें यही हलाक कर देगा और इसका राज हमेशा राज ही रह जाएगा, इमरान ने कहा। अगर तुम्हें मालूम था कि वो हमें सैटेलाइट से चेक कर रहे हैं तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था, जूलिया ने इसे घूर कर कहा। बता देता तो तुम सब डर जाते, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। हम और डर जाते, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमें भला डरने की क्या जरूरत थी, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। वो इसलिए कि इमरान ने अभी इतना ही कहा था कि वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसे तेज बू का एहसास हुआ। ओ हो, ये हैगम गैस की बू है, सांस रोक लो जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा, जबकि इसके साथियों के जिस्म इस तरह से लरज उठे थे जैसे जलजला आ गया हो। इमरान ने फौरन अपना सांस रोक लिया, लेकिन इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका जहन किसी लट्टू की तरह से घूमता जा रहा हो। इसने अपने जहन पर काबू पाने के लिए जहन को ब्लैंक कर लिया और ऐसा करते ही वो बेख्तियार लड़खड़ाकर नीचे गिरा। चंद लम्हों तक जहन को ब्लैंक करने के बाद जैसे ही इसने इसे दोबारा नुक्ते अर्तकाज से हटाया तो इसे अपने दिमाग में रोशनी भरती महसूस होने लगी और इसके जहन में खून की गर्दिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में इसका जहन एतदाल पर आ गया, लेकिन वो इसी हालत में पड़ा रहा जिसे इसे अभी होश न आया हो। इसे यकीन था कि इन्हें हलाक करने के लिए ही बेहोश किया गया था, ताकि मुसल्ला अफराद आए तो वो इन्हें बेहोशी ही हालत में ही हलाक कर दें। ये इमरान की ही हिम्मत थी कि इसने फौरी तौर पर अपना दिमाग कंट्रोल करके ब्लैक कर लिया था, वरना वो अपने साथियों के साथ बेमौत मारा जाता। इमरान का हाथ फौरन अपनी जेब की तरफ रेंग गया था, क्योंकि किसी भी लम्हे वहाँ कोई आ सकता था और इमरान जानता था कि काल फल्ले आया तो वो इन्हें एक लम्हे का भी मौका नहीं देगा। इसने जेब में मौजूद मशीन पिस्टल हाथ में ले लिया था। इसी तरह काफी देर गुजर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। इमरान ने सभी साथी बेहोश पड़े थे और इमरान सोच रहा था कि हो सकता है कि इन्हें किसी मशीनी सिस्टम से चेक किया जा रहा हो, इसलिए वो इसी तरह पड़ा रहा ताकि देखने वाले यही समझे कि वो भी अपने साथियों की तरह से बेहोश है। फिर दो घंटों के बाद अचानक इसे दाएं तरफ से कमरे की एक दीवार हटने की आवाज सुनाई दी। वो सब बेहोश पड़े हैं, चलो अंदर चलो जल्दी, इसे एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज काक बिल्ले की नहीं थी। इसी लम्हे इमरान ने दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। दूसरे लम्हे इसे कमरे में 10 सुर्ख वर्दियों वाले कमांडोज दाखिल होते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथों में मशीन गने थी। इनके साथ एक और नौजवान था जो लंबा और जसीम नजर आ रहा था। वो सब कमरे में आकर दरवाजे के पास रुक गए थे और इन्होंने मशीन गनों का रुख इमरान और इसके साथियों की तरफ कर दिया था, जबकि लंबे कद वाला नौजवान कदरे आगे आकर गौर से इन सबको देख रहा था, जैसे वो चेक कर रहा हो कि इनमें से कोई होश में तो नहीं है। ठीक है, बॉस आने ही वाले हैं, वो यहाँ आकर अपने हाथों से खुद इन्हें हलाक करेंगे, तुम सब यहीं रुको, अगर इनमें से तुम्हें किसी के जिस्म में हरकत नजर आए तो इसे फौरन गोली मार देना, नौजवान ने कहा। तो इमरान ने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया। کہ ان مسلح افراد نے آتے ہی ان پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو عمران فوراً جیب سے مشین پسٹل نکال کر انہیں گرا لیتا۔ اسی لمحے باہر سے تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور ایک اور نوجوان تیز تیز چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی عمران نے اسے پہچان لیا تھا، وہ کاک فلے ہی تھا۔ کاک فلے جیسے ہی اندر آیا ریڈ کمانڈوز کی ایڑیاں بج اٹھی۔ انہیں ہوش تو نہیں آیا، اب تک کاک فلے نے بے ہوش افراد کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے پوچھا، نو باس میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ہیگم گیس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یہ اسپیشل اینٹی ہیگم لگنے سے پہلے کسی طرح سے بھی ہوش میں نہیں آ سکتے، نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایک مشین گن دو مجھے، میں ان سب کا خود خاتمہ کروں گا، کار فلے نے کہا۔ تو ایک ریڈ کمانڈو نے آگے بڑھ کر اسے اپنی مشین گن دے دی۔ کار فلے نے مشین گن لی اور زمین پر پڑے ہوئے افراد کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان میں عمران کہاں ہے؟ کار فلے نے کہا، اور پھر وہ ایک جگہ پڑے ہوئے عمران کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر رک گیا۔ تو یہ یہاں پڑا ہوا ہے، کار فلے نے حقار امیر لہجے میں کہا۔ لیکن باس یہ یہاں کس لیے آئے تھے؟ ایلبرٹو نے پوچھا۔ انہیں میں نے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا تھا ایلبرٹو، میں پاکستان میں جن چار فائلوں کے حصول کے لیے گیا تھا وہ میں نے حاصل کر لی تھی اور انہیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو میرے بارے میں کسی طرح سے علم ہو جائے اور انہیں یہ بھی پتا چل جائے کہ میں وہاں کتنے عرصے سے موجود تھا اور کیا کر رہا تھا۔ پھر اچانک ان کا ایک ساتھی مجھے نظر آ گیا، میں نے اسے دیکھتے ہی جان بوجھ کر اسے اپنے پیچھے آنے کا موقع دیا تھا اور پھر میں نے اسے بے ہوش کر کے اپنے پاس قید کر لیا تھا، کار فلے نے کہا۔ اور پھر وہ ایلبرٹو کو بتانے لگا کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں تک لانے پر مجبور کرنے کے لیے کیا کھیل کھیلا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، عمران اور اس کے ساتھی واقعی بہت تیز ہیں، میں جانتا تھا کہ یہ ان چاروں لاشوں کے میک اپ صاف کر کے ان کے اصلی چہرے دیکھ لے گا جن کے چہروں پر میں نے اپنا میک اپ کیا تھا، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب کس کے آدمی تھے، اس طرح انہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جاتا، اور پھر اس کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آنا یقینی تھا۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو راستے میں ہی ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ اسرائیل داخل نہ ہو سکیں، لیکن ہر بار قسمت ان کا ساتھ دے جاتی تھی اور یہ سب بچ نکلتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا، اگر میں انہیں ہیڈ کوارٹر سے باہر ہلاک کرنے کی کوشش کرتا تو یہ دونوں، اب بھی ایسا ہی ہوتا میں اگر انہیں ہیڈ کوارٹر سے باہر ہلاک کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں نے تم سے کہہ کر انہیں ہیڈ کوارٹر کے اندر اس ٹیمپ لیئر میں گرا لیا تھا۔ اس بار میں ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتا تھا تاکہ عمران اور اس کے کسی ساتھی کے زندہ بچنے کا کوئی چانس نہ رہے۔ اب یہ اور اس کے ساتھی بے بسی کے عالم میں میرے سامنے پڑے ہیں اور میں دوسرے ایجنٹوں کی طرف یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں انہیں ہوش میں آنے کا کوئی موقع دوں۔ عمران ان کا لیڈر ہے، اس لیے سب سے پہلے ہلاک ہونے کا حق اسی کا ہے، اس لیے اب اس کی چھٹی کا وقت آ گیا ہے، میں اسے طویل اور کبھی ختم نہ ہونے والی چھٹی دے رہا ہوں۔ کار فلے نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایلبرٹو کو ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تو ایلبرٹو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر کار فلے نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کر دیا اور اس کی انگلی مشین گن کی ٹریگر پر جم گئے۔ گڈ بائی عمران فار ایور، کار فلے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے انداز میں کہا جسے عمران سب کچھ سن رہا ہو، اور ایسا ہی تھا، عمران ہوش میں تھا، وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کار فلے نے گڈ بائی کہا، اسی لمحے عمران بجلی کی اسی تیزی سے تڑپا اور کار فلے اچانک بری طرح سے چیختا ہوا اچھل کر کئی فٹ پیچھے جا گرا۔ عمران نے اپنا نچلا جسے اٹھا کر تیزی سے دونوں ٹانگیں گھما کر اس کے پیٹ میں مار دی تھی، جس سے کار فلے ہوا میں اچھل کر دوہرا ہوتا ہوا اس کے بے ہوش ساتھیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے रेड कमांडोज के करीब जा गिरा था। इससे पहले कि रेड कमांडोज सूरत हाल समझते, अचानक कमरा रेड रेड की तेज आवाजों और इंसानी चीखों से बुरी तरह से गूंजने लगा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 22 में समाप्त फरमाएं।